नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। पूरा देश इस हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आज ही के दिन आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। इनमें अधिकतर लोग पर्यटक थे। इस हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पिछले साल 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए सेना ने सोशल मीडिया पर एक संदेश भी साझा किया है, जिसमें आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जब मानवता की सीमाएं पार होती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। इस जघन्य कृत्य ने पूरे देश को झकझोर दिया था और दुनिया भर के देशों तथा नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि देश में तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने देश में एलपीजी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और डीजल की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है और कल 45 लाख से अधिक बुकिंग दर्ज की गई, जबकि लगभग 51 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि कल 8000 टन से अधिक वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हुई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी ने भी पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संपीड़ित और प्राकृतिक गैस तथा बायोगैस के अंतर्गत वितरण केंद्रों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। सुश्री निधि ने यह भी बताया कि 467 आवेदनों में से 157 वितरण केंद्रों से संबंधित मामलों में अंतिम लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों से एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ अपने हर प्रयास को समायोजित करने का आह्वान किया है। देश के सिविल सेवकों को लिखे पत्र में श्री मोदी ने निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सराहा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कल विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में 1478 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। मतदान 44,376 बूथों पर होगा, जिनमें 3,000 सहायक बूथ शामिल हैं। महिलाओं द्वारा 5,444 बूथ संचालित किए जाएंगे। मॉडल बूथों की संख्या 207 है। वहीं बालूरघाट और आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में 2 दिव्यांगजन संचालित बूथ हैं। पहले चरण के चुनाव में 167 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी बूथों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग ने त्वरित प्रतिक्रिया दल, हवाई दस्ते, सीसीटीवी कैमरे सहित विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
राज्य में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। उधर तमिलनाडु में भी कल राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक शिष्टमंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में आज निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की और कांग्रेस अध्यक्ष से देश से माफी मांगने को कहा। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे और लखनऊ 9वें स्थान पर है। आज पिछले दोनों मुकाबलों में मिली हार के बाद इन दोनों टीम की नजर प्रतियोगिता में वापसी करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।